आहान ने चाहत की माँ निशा के लिए हॉस्पिटल में बात कर चुका था। उसने डॉक्टर से निशा के इलाज की पूरी बात कर ली थी और उसके बाद दामिनी से मिलने जा रहा था। आहान मुंबई से काफ़ी दूर बने अपने फार्म हाउस में आ चुका था। फार्म हाउस की देखरेख काफ़ी अच्छे से की गई थी और वो काफ़ी बड़ा भी था। चारों तरफ एक बड़ा सा बगीचा जिसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग की हुई थी और उसके बीच बना एक प्यारा सा सफ़ेद रंग का घर। आहान तेज़ कदमों से चलकर अंदर जा रहा था, लेकिन वो उसके कदम घर के एंट्रेंस की तरफ जाने के बजाय पीछे की तरफ पड़ गए। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दरवाज़े के पास पहुंचा। दरवाज़ा खोलने के बाद वो सीढ़ियां उतरकर बेसमेंट में आ चुका था। बेसमेंट में एक कुर्सी पर दामिनी बंधी हुई थी। उसके माथे पर चोट के निशान थे और उसके इर्द गिर्द 5 आदमी खड़े थे। दामिनी के पास जाते ही आहान ने उस आदमी की तरफ देखा जिसने उसे किडनैप किया था और उससे कोल्ड वॉइस में कहा, आई होप हर बार की तरह तुमने अपना काम बिल्कुल परफेक्टली किया होगा दानिश। उस आदमी का नाम दानिश था और वो लगभग 40 साल के आसपास था। उसके चेहरे पर गहरी दाढ़ी और मूछें थी और बाल भी लंबे थे। उसने अपने कान में बड़े बड़े सिल्वर कलर के डायमंड ईयरिंग पहने हुए थे। दानिश ने हाँ में सिर हिलाया और दामिनी की तरफ देखकर कहा, लोगों की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई सर जी, पर ये औरत बड़ी ही ठीठ है, जब से यहाँ लेकर आया हूँ नाक में दम कर रखा है। आहान ने दामिनी की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी। ऐसे लग रहा था कि ऐसे माहौल में भी वो बेफिक्र होकर सो रही थी। आहान ने दानिश को वहां से जाने के लिए कहा। उसके साथ उसके बाकी आदमी भी जा चुके थे। उन सब के जाते ही आहान दामिनी के सामने आया और उसके मुंह पर पानी का ग्लास उड़ेल दिया। इसी के साथ दामिनी की आंखें खुली। दामिनी हड़बड़ाते हुए उठी। उसने आंखें खोली तो सामने आहान था। आहान को देखकर उसे काफी हैरानी हुई, लेकिन अगले ही पल वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, क्या मुझे यहाँ क्यों उठाकर लेकर आए हो और तुम ऐसे काम कब से करने लग गए? जानते हो ना तुम्हारे बाप को पता चला तो वो क्या हाल करेगा तुम्हारा। तुम्हें इस वक्त इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। रही बात मेरे बाप की तो डोंट वरी, तुम्हें कंपनी देने के लिए जल्द ही वो तुम्हारे पास आ जाएगा, आहान ने सर्द आवाज में कहा। फिर आहान ने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाली और उसे पीने लगा। वो जानबूझकर उसका धुआं दामिनी के मुंह पर छोड़ रहा था। उसकी इस हरकत पर दामिनी उस पर गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम मेरे साथ बदतमीजी करना बंद करो आहान, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मुझे यहाँ उठाकर क्यों लेकर आए हो? तुम जब ये भोली बनने का दिखावा करती हो उस वक्त मुझे और बुरी लगती हो। आहान ने गुस्से से दामिनी की तरफ देखा और उसके पास आकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर खींचा। दामिनी दर्द से चिल्लाई, पर उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम बिल्कुल जानवर बन गए हो आहान ओबेरॉय, दामिनी चिल्लाते हुए बोली। उसकी आंखों में आंसू थे। आहान ने दामिनी की आंखों में देखा और फिर बिना किसी भाव के कहा, और मुझे जानवर बनाने वाला है कौन दामिनी दास? तुम और तुम्हारा वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड विजय ओबेरॉय, तुम दोनों ने मिलकर मेरी ये हालत कर दी है कि आधे से ज्यादा टाइम मैं अपने सेंसेस में नहीं रहता। बोलते हुए आहान ने दामिनी के बाल छोड़ दिए थे। जो बीत गया उस बात को याद रखकर कोई फायदा नहीं है आहान, जानते हैं हमसे गलती हो गई, पर अब टाइम बदल गया है। देखो तुमने खुद को कितना सक्सेसफुल कर लिया है, हमने जो किया उसका तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दामिनी लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली। वो आहान को अपनी बातों के जाल में फंसा रही थी। जब उसे लगा वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा तो दामिनी ने नरमी से कहा, देखो पुरानी बातों का बदला लेने का कोई फायदा नहीं है, अब सब बदल चुका है, मैं और विजय एक दूसरे से मिलते तक नहीं है। हाँ एक दूसरे से मिलते नहीं हो, फिर भी होटल रूम में एक दूसरे की बाहों में होते हो, आहान ने जवाब दिया। फिर उसने दामिनी की दो उंगलियों को पकड़ा और उन्हें हो सकता था उतना एक दूसरे से दूर खींचते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की मेरी मॉम को नुकसान पहुंचाने की? मुझे तकलीफें देने के बाद तुम्हारा मन नहीं भरा जो अब मेरी मॉम को तकलीफ पहुंचाने तक आ गए, दामिनी दर्द से चिल्ला रही थी। तभी आहान दूसरी तरफ गया और एक पॉकेट नाइफ लेकर आया। आहान ने उसे दामिनी के गले पर रखा और उसकी नोक को अंदर धंसाने लगा। अब वाकई दामिनी को आहान से डर लगने लगा था। वो जोर से चिल्लाई, नो आहान, तुम इस तरह मुझे मार नहीं सकते। आहान ने दामिनी की तरफ सर्द निगाहों से देखा और फिर ईविल स्माइल करते हुए कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ दामिनी दास, तुमने और विजय ओबेरॉय ने मेरे साथ जो भी किया उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम दोनों की वजह से मेरी ये हालत हो गई है, हक है मेरा तुम्हारी जान लेने का। बोलते हुए आहान दामिनी की गर्दन पर चाकू चलने लगा था। इससे पहले कि दामिनी की गर्दन पर लग रहा कट और गहरा होता या आहान उसका गला काट देता, वो जोर से चिल्लाई, आहान मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज डोंट हार्म मी। दामिनी की बात सुनकर आहान के हाथ वहीं पर रुक गए। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो दामिनी को बुरी तरह से घूर रहा था। तुम झूठ बोल रही हो ना, आहान ने सर्द आवाज में पूछा। दामिनी की जो हालत थी उस सिचुएशन में आहान से झूठ बोलना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। दामिनी ने नामे सिर हिलाया और अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही,
बस इसी के खातिर मुझे वो कदम उठाना पड़ा, मेरे लिए ना सही, अपने होने वाले भाई या बहन के लिए। दामिनी बोल रही थी तभी आहान बीच में जोर से चिल्ला कर बोला, तुम्हारी इस फलती को मुझसे जोड़ने की कोशिश मत करो, ना तुम मेरी कुछ लगते हो, ना तुम्हारी ये पाप की निशानी। ये मेरे पाप की नहीं, प्यार की निशानी है। दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम इस बात को कभी नहीं समझोगे। जिस दिन तुम पर गुजरेगी ना आहान ओबेरॉय, उस दिन पता चलेगा। बोलते हुए दामिनी की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। वो जैसी भी थी पर उसके दिल में अपने होने वाले बच्चों के लिए बहुत प्यार था। आहान को विजय और दामिनी के रिश्ते से प्रॉब्लम थी, ऊपर से वो माँ भी बनने वाली थी। इस बात से आहान का गुस्सा फिर से बर्स्ट होने लगा था। उसने दामिनी को वहीं छोड़ा और वहां से ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद आहान ने दानिश से कहा, उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी उसे यहाँ से बाहर जाने को कभी नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए ज्यादा टॉर्चर मत करना और काफी देर तक बांध कर भी नहीं रखना है, वो यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकल पाएगी। आहान ने ये डिसीशन दामिनी की प्रेगनेंसी के चलते लिया था। दानिश को आहान का फैसला सुनकर हैरानी हो रही थी, उसने इतनी छूट कभी किसी के लिए नहीं बरती थी। दानिश पहले भी उसके लिए काम कर चुका था पर पहली बार उसने आहान का सॉफ्ट साइड देखा था। आप उसे इतनी छूट क्यों दे रहे हो, उसने शिवानी मैम की जान लेने की कोशिश की है, आप उसे इतनी आसानी से जाने भी कैसे दे सकते हो, दानिश ने हैरानी से पूछा। आहान को पसंद नहीं था कि कोई उसके साथ सवाल जवाब करे। उसने गुस्से से दानिश की तरफ देखा तो उसकी नजरें झुक गईं। सॉरी सर, दानिश धीरे से बोला।
यू बेटर बी, आहान ने जवाब दिया और वहां से जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसने बिना मुड़े तेज आवाज में कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उसे छोड़ रहा हूं, उसे उम्र भर इसी कैद में रहना है। बस यूं समझ लो कि उसने जिसके लिए अपनी जिंदगी मांगी है, उम्र भर उसी के लिए तड़पती रहेगी। दामिनी दास को लगा होगा कि अपने बच्चे का सहारा लेकर वो बच सकती है। वक्त आ गया है, उसने जो तकलीफ मुझे दी थी वो सूद समेत उसके बच्चे को लौटाने का। उसके बाद आहन वहां से चला गया। दामिनी ने अपने बच्चे के बारे में बात कर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और इसका पता उसे जल्द ही लगने वाला था। वहीं दानिश आहन के प्लान को समझ गया था, साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि दामिनी प्रेग्नेंट है, इस वजह से आहन ऐसा कर रहा है। उसके फेस पर हल्की स्माइल थी और वो नीचे वापस दामिनी के पास चला गया। आहन ने दामिनी और दानिश के सामने काफी शांत रहने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से जल रहा था। जब से आहन को पता चला था कि दामिनी प्रेग्नेंट है, तब से उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आहन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो चाहत के पास मिस्टर रवि के घर जा रहा था। गाड़ी चलाते हुए उसने खुद से कहा, दामिनी का बच्चा प्यार की निशानी है और मैं और मेरा भाई मजबूरी की। बहुत दोगले निकले तुम विजय ओबेरॉय, प्यार की निशानी किस हद तक मजबूर करती है ये तो अब वक्त बताएगा। मेरी मॉम तुम्हारे सच से अनजान है पर मैं नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुमने दामिनी से ये कहा था कि तुम मेरी मॉम के साथ मजबूरी में हो और हम दोनों भी उसी मजबूरी की निशानी है। अब तुम्हारी ही मजबूरी की निशानी तुम्हें कितना मजबूर करती है ये देखने में बहुत मजा आएगा। आहन जहां चाहत के पास अपना गुस्सा शांत करने के लिए जा रहा था, वहीं चाहत उसके मना करने के बावजूद अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल गई हुई थी।